الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی دفعہ ہم نے سورہ الفاتحہ کا آغاز کیا تھا تو پہلی تین آیات ہم نے پڑھ لی تھیں اور آج ہم اس سے آگے چلیں گے. چوتھی آیت پر بھی ہم نے مختصر بات کر لی تھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم اللہ ہی کی بندگی چاہتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ تین جو صفات پیچھے گزری ہیں, رب العالمین, الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین, ان تینوں صفات کے شعور کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم ایاک نعبد کی بات کہیں. رب العالمین میں ہم نے آقا رب ہونے کے معنی لیے تھے, خدا ہونے کے معنی لیے تھے, تو جس ذات کو ہم اپنا مالک مان لیں, خدا مان لیں, تو لازمی طور پر اس کے مقابلے میں ہم بندے ہوئے اور جواب دے ہوئے. الرحمن الرحیم میں ہم نے شفقت مہربانی کو مانا تھا, لیکن ساتھ ہی عدل کے پہلو کو اس میں سمجھا تھا کہ رحمت عدل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. تو عدل کے پہلو سے بھی بات یہی بنتی ہے کہ پھر ہمیں بھی ایسا رویہ اختیار کرنا ہے, اگر عدل ہمارے ساتھ ہونا ہے تو پھر ہمیں وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جو سچائی پر مبنی ہو, حقیقت پر مبنی ہو, اور وہ کیا ہے, وہ ایاک نعبد. ٹھیک ہے, مالک یوم الدین, قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے میرے اور آپ کے کاموں کا, تو اس دن کسی اور کی بات نہیں چلنی ہے, اللہ کی بات چلنی ہے, تو اس کا بھی لازمی تقاضا ہے کہ ایاک نعبد, ہم اللہ ہی کے بندگی اختیار کرتے ہیں, یہ کہنا پڑے گا. تو یہ جو بندگی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. بندگی دراصل ایک نوعیت کی غلامی ہے, ایک نوعیت کی ورشپ کرنے والا آدمی پلس بات کو ماننے والا آدمی, یہ دو باتیں مل کر بندگی بنتی ہے. ورشپ یعنی پرستش کرنے والا, پوجنے والا, پوجا پاٹھ کرنے والا, میں یہ لفظ اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ اس کی نیچر اچھی طرح سمجھ آ جائے. بندگی میں یہ بھی شامل ہے اور اطاعت بھی شامل ہے, فرما برداری بھی شامل ہے. تو پہلا زور جو ہے وہ بندگی پر ہے, پرستش پر ہے. تو ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اس معنی میں جملہ ہے, اور ہم اللہ ہی کے تابع دار ہوں گے, یہ دونوں معنی اس کے اندر شامل ہیں. عربی میں عبد اور سلیو ایک ہی معنی رکھتا ہے. سلیو کون ہوتا ہے؟ جس کے اپنے کوئی رائٹس نہیں ہوتے, مالک کی ملکیت ہوتا ہے, مالک جہاں چاہے پھینک دے, بیچ دے, قتل کر دے, اس کے اپنے کوئی رائٹس نہیں ہوتے. خدا کے مقابلے میں ہمارے بھی کوئی رائٹس نہیں ہیں, لیکن یہ خدا کی مہربانی ہے کہ ہمیں مخلوق کے رائٹس دے دیتا ہے. میں نے مثال دی تھی پچھلی دفعہ کہ ایک پینٹنگ آپ کے پاس, آپ کا ایک پینٹر ہے جس نے پینٹنگ بنائی, چاہے تو آگ میں جلا کر سردیوں میں آگ تاپ لے, چاہے تو بیچ دے, چاہے تو اس کو اپنے گھر میں بڑے عزت کے ساتھ آویزاں کر دے, اس کی پینٹنگ ہے, جو مرضی کرے. لیکن اگر وہ پینٹر اپنے گھر میں آویزاں کر لے اور کسی کو ہاتھ نہ لگانے دے, اس کی بڑی حفاظت کرے, فریم لگا کر سب کچھ, تو اس نے کیا کیا, اپنی تخلیق کا, اپنی جو اس نے کریشن کی تھی اس کا اس نے پورا لحاظ رکھا ہے, اس نے پورا اس کو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کر لیا, مخلوق بنا لیا, تو خود ہمارے حقوق طے کر دیے. جب حقوق طے کر دیے تو اب اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا, اس نے پالنے کی ذمہ داری لی ہے, پال رہا ہے, اس نے عدل کی ذمہ داری لی ہے, عدل کر کے رہے گا. ٹھیک, یہ عبد ہونے کے باوجود, اس کے باوجود کہ ہماری حیثیت صرف ایک پینٹنگ کی ہے اور خدا کی حیثیت ایک پینٹر کی ہے, اس کے باوجود اس نے ہمیں عزت دی ہے, ہمیں مخلوقات میں سے, بہت ساری مخلوقات میں سے ہمیں عزت دی ہے, احترام دیا ہے. یہ اس کی خدائے مہربان ہونے کی ایک علامت ہے. تو ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں. بندگی کا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کا حق کیسے حاصل ہوا ہے, اسی کے لیے میں نے یہ تمثیل بنائی تھی تو پینٹر کی اور پینٹنگ کی. تو خدا خالق ہونے کی وجہ سے ہمارا مالک ہے, رب ہے, تو اس لیے بندگی کا حقیقی حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو ایاک نعبد کا مطلب ہے حقیقی طور پہ بندگی ہم اللہ ہی کی کرنا چاہتے ہیں, اسی کا حق ہے. وہ ایاک نستعین, اور ہم اسی کی اطاعت کر, اسی سے مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنے کے معنی میں نے بتائے تھے دونوں, कि एक मदद का मतलब ये होता है कि हम इस बंदगी पर चलने के लिए आपकी मदद चाहते हैं, और दूसरा ये कि शिर्क जब भी पैदा हुआ है मज़हबी दुनिया में, जब भी रसूल आए उन्होंने तौहीद कायम की, तो उनके जाने के बाद शिर्क कहाँ से पैदा होता है? वो इस्तियानत के पहलू से पैदा होता है, दूसरों से मदद लेना, औलाद नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, खुदा का दरवाज़ा बंद महसूस होता है, तो चलो किसी और के पास चले चलते हैं, फलां बाबा जी रिस्क खोल देंगे, फलां औलाद दिला देते हैं, उनका तावीज़ बड़ा कारगर है, ये रास्ते खुल जाते हैं। तो ये जो नस्ताइन का ये पहलू है, ये तौहीद और शिर्क के पहलू से भी यहाँ पेश नज़र है। अब जब ये हकीकत हमारे सामने आ जाती है कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, रहमान और रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, और हम अपनी तरफ से ये बात इकरार करते हैं कि हम आप ही की बंदगी करेंगे और आप ही की इस्तानत चाहेंगे, तो उसके बाद अब अगला सवाल पैदा हो जाता है। वो ये सवाल पैदा हो जाता है कि मैं क्या रास्ता इख्तियार करूं कि जिसके नतीजे में बंदगी सही तरह से हो सके और मैं क़यामत वाले दिन कामयाब हो जाऊं, मैं वो क्या रास्ता इख्तियार करूं? यानी फितरी सी बात है कि अगर रब्बुल आलमीन है, अर्रहमान अर्रहीम है, और क़यामत के दिन सारा हिसाब किताब होना है और सब कुछ होना है, तो फिर मुझे पता होना चाहिए ना कि निसाब क्या है जी पास होने का। हम जब भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पेपर का अनाउंस करते थे, फ़ौरन पूछे जी सिलेबस क्या है, कहाँ से सवाल आने हैं, कितने चैप्टर आप इम्तिहान में शामिल करेंगे। ठीक जैसे ही हम खुदा की बंदगी का तसव्वुर अपने जहन में लाते हैं, तो बंदगी करनी कैसे है, बंदगी की हकीकत क्या है, कौन सी बंदगी अल्लाह को पसंद है? क्या वो बंदगी अल्लाह को पसंद है कि एक हिंदू की तरह 12-12 साल कुएं में खाए पिए बगैर लटके रहें, या कुछ और तरह की बंदगी खुदा को पसंद है? अब इस बंदगी को पहले ये सवाल समझ लीजिए। दूसरा सवाल एक पैदा होता है कि मैं मानूं क्यों? आपने कहा जी कि 5 नमाज़ें पढ़नी है, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी है, अल्लाह ताला को क्या मसला है, मेरी 5 नमाज़ों की ज़रूरत क्या है? इन दो सवालों को जहन में रखिए और अगला जुमला देखिए, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। हम आप ही की बंदगी करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं, और आप ही हमें सीधे रास्ते की हदायत बख्शें। बंदगी कैसे करनी है उसका तरीका पूछ लिया, लेकिन तरीका पूछते हुए जो जुमला बोला गया वो सादा जुमला नहीं है, वो सादा जुमला नहीं है। कहा गया है कि सिराते मुस्तकीम की हदायत दीजिए। अब सिराते मुस्तकीम में बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं जी, सिराते मुस्तकीम का क्या मतलब है, सारे रास्ते सीधे ही होते हैं, तसव्वुफ कौन सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, हिंदुज़म कौन सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, सीधा रास्ता किसको कहते हैं, सवाल जहन में आता है। जैसे ही ये लफ्ज़ सुनते हैं हम इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला ने सिराते मुस्तकीम का लफ्ज़ क्यों बोला है? अब हमने कई जवाब दिए, मसलन ये कि सीधा रास्ता आसान होता, बस आप कहेंगे बस सीधे चले जाए पहुंच जाएंगे, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। लेकिन अगर कोई आपको कहे जी पहले आपने दाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ना है, फिर दाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ना है, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, आप भूल जाएंगे। कहा जाए सीधा जाना पहुंच जाएंगे। फिर कहा गया कि सीधा रास्ता सबसे छोटा रास्ता होता, ठीक है, सीधा रास्ता भूलने वाला नहीं होता, सीधा रास्ता लाजमन मंजिल तक लेकर जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो तो हो सकता है भूल जाएं, भटक जाएं, ठीक। ये सारे मानी इसके अंदर बताए गए। लेकिन अगली आयत देखिए, तो फिर मैं वापस आऊँगा इस आयत पर। फरमाया कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपकी इनाम हुआ है, उनका रास्ता नहीं जिन पर आपका गज़ब हुआ और जो गुमराह हुए, उनका रास्ता नहीं। तो जिनको जिनके ऊपर गज़ब हुआ उनको भी हदायत दी गई थी, जो जालीन है उनको भी हदायत दी गई थी, उनका रास्ता नहीं चाहिए, उनका रास्ता चाहिए जिन पर आपका इनाम हुआ है। आगे जो इनाम याफ्ता हैं उनको बता दिया अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान वगैरह में कि वो शहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, अम्बिया हैं, सालेहीन हैं। पहले नंबर पर अम्बिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शहदा हैं, सिद्दीकीन हैं और सालेहीन हैं, ये बता दिया। यानी हर साले आदमी जो खुदा की मीज़ान में साले करार पाएगा वो अनंत अलैहिम, वो मैं आप भी हो सकते हैं और अम्बिया और सालेहीन भी हो सकते हैं। इससे पता चल रहा है कि असल मसला ये नहीं है कि सिर्फ हदायत लेनी है, इसमें एक और चीज़ भी मांगी जा रही है कि जिन पर हदायत हुई उनमें कुछ लोग इनाम याफ्ता हुए, कुछ लोग मकजूब अलहम हुए, कुछ लोग जालीन हुए। उनका रास्ता नहीं चाहिए, दो लोगों का रास्ता नहीं चाहिए, उनका रास्ता चाहिए जो इनाम याफ्ता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है, ये दो बातें इकट्ठी समेट दी गई हैं कि सीधा रास्ता यानी अल्लाह की तरफ से हदायत, और दूसरा ये कि मेरे रवैया क्या होना चाहिए, मेरा रवैया भी सीधा होना चाहिए। ये दिमाग की कजी होती है जो हमें सच्ची बात को मानने से रोकती है। वो कजी तकब्बुर से आ सकती है, वो तासुबात से आ सकती है, वो अपने पुराने मजहबी तसव्वुरात से आ सकती है, किसी वजह से भी आ सकती है। तो अगर मेरा दिमाग ही कजमज है, गलत तरीके से मैं उसको सोच रहा हूँ, चीज़ों को ले रहा हूँ, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं हदायत कबूल नहीं कर सकूँगा। अबू जहल में और अबू बकर में क्या फ़र्क था? एक का रवैया मुस्तकीम था, एक का रवैया मुस्तकीम नहीं था, और कोई फ़र्क नहीं था। दोनों की सलाहियत एक जैसी, बल्कि अबू जहल तो उन लोगों में से है कि जिनकी दुआ की है नबी सल्लम ने कि अल्लाह ताला इस दो उम्रों में से एक उम्र मुझे दे दे, इतने बासलाहियत आदमी, लेकिन कजी की वजह से हदायत नहीं मान सका। तो यहाँ दो चीज़ें इकट्ठी शामिल हैं इस जुमले के अंदर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता अता कर, मतलब जो आपका सीधा रास्ता है दीन वाला वो भी, और मुझे भी सही रवैया अख्तियार करने की तौफीक दे, मैं भी अपनी कजी छोड़ दूँ दिमाग की टेढ़े मेढ़े बातें। हम अपने उस्ताद की असाज़ा जिनसे पढ़ा है, तो कुछ तालिबे इल्म ऐसे होते थे जो सोचते रहते सवाल क्या करें, और कुछ तालिबे इल्म ऐसे थे पहले बात सुनते थे फिर सवाल करते थे। तो जो पहले सुन रहा है, अच्छी तरह बात को जहन नशीन कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, वो सीधे तरीके से सोच रहा है, समझ रहा है। और एक आदमी जो बैठा इसलिए है कि मीन मेख निकालें, कोई सवाल निकालें, कोई एतराज़ निकालें, तो हो सकता है कि उस्ताद की बात ना समझे, लेकिन बात करता रहेगा। तो सही रवैया और सही रास्ता, दो चीज़ें इकट्ठी मांगी गई हैं, क्योंकि हदायत इन सब पे उतरी, जिनका जिक्र आगे जिन ग्रहों का हो रहा है उन सब पे हदायत उतरी है। लेकिन हदायत उतरने के बाद कुछ लोग इनाम याफ्ता हुए, कुछ मकजूब अलहम हुए, मैं इनकी तशरीह कर देता हूँ, कुछ जालीन हुए। तो अल्लाह ताला ने अब इस सूरह में बताया कि आगे जो कुरान आ रहा है और ख़ुद सूरह फातिहा, इसको मानने के लिए लाजम है कि तुम्हारा भी रवैया दुरुस्त हो। अगर तुम मुतकब्बर हुए, अगर तुमने आगे चलकर एक जुमला अल्लाह ताला ने बोला है इत्तबा सबीला मन अनाब, उस आदमी वाला रास्ता इख्तियार, वहाँ भी सबील का लफ्ज़, यहाँ सिरात का लफ्ज़ है, वहाँ सबील का लफ्ज़, उस आदमी का रास्ता इख्तियार करो जो इनाबत करने वाला है, गलती से रुजू करने वाला है, सच्चाई की तरफ वापस पलटने वाला है, गलती लगे तो गलती छोड़ के दुरुस्त बात की तरफ आने वाला है, उस आदमी का रास्ता इख्तियार, उसको हदायत मिलेगी। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कल्बे सलीम होना चाहिए, तकब्बुर और अना और अपने मसलक की जो असबियत होती है दिल में वो नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें इकट्ठी यहाँ पर मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि रवैये का यहाँ गलबा है। सीधे रास्ते की हदायत की बजाय सीधे रवैये की तलब ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इला नहीं आया। अगर कहा जाए कि मुझे सीधे रास्ते की तरफ हदायत है तो फिर आना चाहिए एहदिना इला सिरातिल मुस्तकीम, और जब कहा जाए कि एहदिना सिरातिल मुस्तकीम, तो दोनों का इम्कान होता है कि सीधे रास्ते की तरफ मुझे हदायत दीजिए, और ये भी कि मुझे सही रवैया इख्तियार करने की तौफीक मिले। अब अनमत अलैहिम, मैंने बता दिया कि ये आगे कुरान ने बयान कर दिया है कि नबी हैं, शहदा हैं, सिद्दीकीन हैं और सालहीन हैं, ये दर्जे हैं। अंबिया वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत के मनसब पर फ़ाइज़ किया है, शहदा वो लोग होते हैं जो रसूलों के साथ इकट्ठे मिलकर गवाही देते हैं, जैसे सहाबा की शान कुरान में बयान हुई है कि शहदाउल्लाह का उनको दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद जो सिद्दीकीन हैं वो लोग हैं कि जो जिनकी फितरत सूरह नूर के उस तमसील के मुताबिक इतनी साफ शफाफ होती है कि उधर हक बात सुनते हैं उधर मान लेते हैं, बिल्कुल तरद्दुद नहीं करते, एक लम्हे के लिए भी उनके जहन में ये सवाल नहीं उठता कि मानूं कि ना मानूं। उनका शोला फितरत इतना तेज़ होता है कि कुरान कहता है कि लम तमसस हुनार, आग छूती भी नहीं उसको भड़क उठता। ये जो حالت ہے، یہ صدیقین کی حالت ہے. ابو بکر صدیق دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے ہیں، دوستی ہے، اور وہ وحی لے کر آتے ہیں، پہلی وحی سناتے ہیں تو ابو بکر صدیق مان لیتے ہیں، ان کو صدیق کہا گیا اس لیے کہ انہوں نے کوئی تردد ہی نہیں کیا. حضرت عمر جیسے ذہین آدمی کو 2 سال لگے ہیں کیونکہ تردد کر رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ میں اپنی قومیت تہذیب کیوں چھوڑ دوں، میں کیوں اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دوں. لیکن جیسے ہی اپنی بہن سے قرآن کا متعلقہ حصہ سنتے ہیں جو وہ پڑھ رہی تھی، ان کی صدیقیت بھی ویسے ہی غالب آ جاتی ہے. چند سیکنڈ لگتے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوتا چھوڑ دیتے ہیں، تلوار پکڑی ہوتی چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو صدیقیت ہے یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، لیکن ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جس کی فطرت بالکل سلیم ہے. اس نے اپنی فطرت میں گندگی نہیں بھری ہوئی، وہ پاکیزہ باتوں کی پہچان رکھتا ہے. گندگی کیا چیز ہے؟ وہی چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں، تعصبات ہیں، تکبر ہے، انا ہے. تکبر اور انا بہت بڑی رکاوٹ ہے. میں آپ کی بات مان لوں، اس شخص کی بات مان لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھ سے ذہین کیسے ہو گیا؟ عربوں کو دیکھیں نا، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس 2 بستیوں کے، مکہ اور طائف کے، کسی بڑے آدمی پر نبوت اتری ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اترائی؟ تکبر ہے نا، اور کیا. آپ سچائی کو دیکھیں. ابو بکر صدیق نے کیا دیکھا؟ سچائی کو، بات کو دیکھا. ابو جہل نے کیا دیکھا؟ عصبیت کو دیکھا، میری قوم کیا کہے گی، میں اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ دوں. تو اس نے اپنے فطرت کے شعلے کو بجھا دیا ہوا تھا، ابو بکر صدیق نے بالکل قائم رکھا ہوا تھا. اس لیے اگر آپ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتری ہے تو سیدہ خدیجہ نے جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں، ٹھیک انہی الفاظ میں جب ابو بکر صدیق کو ان کی قوم نے نکال دیا تو جس شخص نے، ابو دغنہ نے آپ کو پناہ دی، اس کے بھی الفاظ وہی تھے. یعنی اخلاقی طور پر دونوں ملتے جلتے تھے. انہوں نے نبوت کو ویسے ہی ریسیو کیا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ویسے ہی مانا ہے. تو انمت علیہم میں پہلے انبیاء ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صدیقین ہیں. صدیقین کی میں نے وضاحت کر دی، شہداء وہ ہیں جو رسول کا ساتھ دینے کی وجہ سے گواہ بن جاتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم شہداء تھے. صدیقین، اس کے بعد صالحین ہیں. صالحین وہ لوگ ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی طرح 23 سال بعد بھی ایمان لے آئے. سو لے آئے، ایمان لے آئے اور نیکی کے مطابق زندگی گزارنے لگ گئے، گناہ چھوڑ دیے، توبہ کر لی، گناہ کیے ہی نہیں. جیسے ابن قیم اپنے بارے میں کہتے ہیں رحم اللہ، کہ بچپن سے ہی کو خرابی نہیں آئی، گناہ کی طرف گیا ہی نہیں، بچپن سے ہی صحیح صالح رہے. یہ صالحین ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی نیکی کے اوپر گزار دی. اب یہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی اوپر والے 3 لوگ ہیں، ان یہ بھی صالحین میں ہیں. صالحین ایک جینرک قسم کی کیٹیگری ہے جس میں سارے ہی آتے ہیں. انبیاء بھی صالحین ہوتے ہیں، شہداء بھی صالحین ہوتے ہیں، اور صدیقین بھی صالحین ہوتے ہیں. اگر یہ تینوں صالحین نہ ہوں تو یہ درجہ پا ہی نہیں سکتے. تو صالحین وہ سمپلسٹ یا سب سے سادہ درجہ ہے جس میں یہ سارے لوگ آتے ہیں. تو یہ انمت علیہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا ہے. اور اس کے بعد مغضوب علیہم، وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوا، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں. ہماری مذہبی اعتبار سے جو تاریخ ہے اس میں قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم صالح اور اہل کتاب کا ایک طبقہ یہود جو ہیں، وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ناراض ہوئے اور ان کے اوپر یا عذاب آیا یا ابھی بھی عذاب موجود ہے. یہ مغضوب علیہم، جن پہ غصہ آیا اللہ تعالیٰ کو. مغضوب علیہم کا مطلب ہے جن پہ اللہ کا غصہ آیا اور اللہ نے ان کو سزا دی. اور اگلی چیز ہے ضالین. ضالین وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہدایت آئی، انہوں نے قبول نہیں کی، لیکن کسی وجہ سے عذاب بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے، مثلاً اس وقت ہماری امت ضالین کی حالت میں زیادہ ہے ہدایت یافتہ ہونے کے مقابلے میں، لیکن عذاب بھی نہیں آیا. قیامت والے دن پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے بہت سارے جنہوں نے ہدایت گروں میں ہونے کے باوجود نہیں مانی. کیونکہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. اب ہمارے اوپر اتمام حجت نہیں ہوا ہوا، لیکن ہم جانتے بوجھتے بعد گمراہیاں اختیار کر لیتے ہیں. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने मज़हब की ऐसी तावीलें करते हैं कि मज़हब अल्लाह का मज़हब अपनी जगह पे रह जाता है और मेरी और आपकी बनाई हुई बातें चल पड़ती हैं, वो भी ज़ालिम में आते हैं। तो हकीकी मज़हब को छोड़ने वाले, हकीकी मज़हब को तब्दील करके नया मज़हब बना लेने वाले, ये ज़ालिम में शामिल हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल अहले किताब का एक ग्रोह जो नसारा कहलाता है, बल्कि नसारा नहीं कहलाता, नसारा तो अल्लाह ताला ने कबूल किया उनको, लेकिन बहरहाल उन्हीं की शाखें जो हैं हमारे यहाँ मसीही बरादरी वगैरह, वो इसमें आ सकते हैं। तो जिन कौमों पे अजाब हुआ इनके ऊपर अजाब नहीं हुआ, ये सिर्फ ज़ालीन है, यानी इन्होंने खुदा के दीन को छोड़कर दूसरे दीन को अपना लिया है, खुदा की हदायत को छोड़कर दूसरे। मैंने बताया कि हम में भी इस वक्त शामिल हैं ये लोग, अहले किताब में भी शामिल हैं। तो ये सूरह फातिहा है कुरान मजीद के इफ्तिताहिया के तौर पर, उसके दिबाचे के तौर पर। मैंने अर्ज़ किया था कि इसके बारे में बात मैं आप करूँगा इंशाल्लाह नमाज के पहलू से, कि नमाज में इसकी क्या हैसियत, क्योंकि सूरह फातिहा नमाज का हिस्सा भी बनाया गया है। क्योंकि इस दर्स में मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने अंदर तरबियती चीज़ें ज़्यादा इस्लाह की जो हैं वो उनको इख्तियार करें। सूरह फातिहा नमाज में लाजम की गई है और हमारे यहाँ समझा जाता है, माना जाता है कि हर रकत में लाजमन पढ़ी जाएगी। ये मुकर्रर क्यों की गई है? कुरान मजीद में मैंने इसको एक ओपनिंग सूरा के तौर पर, फातिहा के तौर पर, दिबाचे के तौर पर लिया है, उसी एतबार से इसकी तौज़ीह की है। लेकिन नमाज में ये इबादत के एक हिस्सा बना दी गई है, मुस्तकिल हिस्सा, जिस तरह अल्लाह अकबर व समय अल्लाह लिमन हमीदा है, उसी तरह से फातिहा भी है। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ या मगरब की या इशा की, और मेरे वालिद साहब फौत हो गए हुए हैं, और मैंने कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दोनों मतलब ले लीजिए, अल्लाह का शुक्र है, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, ये जुमला कहना बनता? ग्राहक नहीं आया सुबह से दुकान पर और मैं नमाज में खड़ा हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कितनी अजीब बात है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने ज़बरदस्ती हर नमाज में आकर अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज़ करना है। फालत फौत हो जाए, भाई फौत हो जाए, कारोबार तबाह हो जाए या कोई कामयाबी मिल जाए, खुशी मिल जाए, तब हर सूरत में सूरह फातिहा पढ़नी आ गई। बड़ा मुश्किल पैगाम है, लेकिन देते हैं अल्लाह ताला, या भी आ जाओ पढ़ो, अल्लाह का शुक्र है, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तो नमाज में ये जुमला कहना, अगर लाशोरी में कहें तो कुछ भी मसला नहीं है, जितना मर्जी कह लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं शऊर के साथ नमाज पढ़ रहा हूँ और मैंने अब जुमला बोला है कि या अल्लाह आंखों में आंसू हैं मेरे, बाले साहब फौत हो गए, मैं कह रहा हूँ या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला खड़ा करते हैं नमाज में। मतलब क्या है कि हर हालत में खुदा का शुक्र, हर हालत में। और जब मैं, अब दो ही रास्ते हैं, या अल्लाह ताला के खौफ की ऐसे झूठ मूठ ये बात कहूँगा या हकीकी तौर पर कहूँगा, दो ही रास्ते हैं। या तो जैसे वाले साहब के सामने कह रहे होते हैं भाई ताड़ी बड़ी मेहरबानी, आइंदा गल मानूंगा, लेकिन नहीं मानने वाले, दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन वाले साहब कह देते हैं, क्या खुदा को भी ऐसा ही कहेंगे जो दिलों के हालात भी जानता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी उस कैफियत को जो किसी गम किसी परेशानी की वजह से है या किसी खुशी की वजह से है, अब खुशी में देख लीजिए, मैंने बड़ी मेहनत करके कारोबार चलाया, कामयाब हो गया, और कहने को क्या कहना है, मैंने आके मेहनत मैंने की है, कहना क्या है, या अल्लाह तेरा शुक्र। एंड दोनों एतबार से देखिए तो ये जुमला मुझे कुछ समझा रहा है कि देखो ये दुनिया खुदा ने बनाई है, खुदा ने चलाई है, उसी का शुक्र करना है, गमी हो या खुशी हो। अब मौत मुश्किल, उस पर भी शुक्र है, और गम और खुशी दोनों पे। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कायनात को नमाज हमारी हर दफ़ा कहती है कि दुनिया को इस नज़र से देखो, इस नज़र से ना देखो जिस नज़र से तुम नमाज से पहले थे, पहला काम ये करती है। अब अगला जुमला देखिए, रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने मेरे वालिद छीन लिए हैं, मेरा बेटा छीन लिया है, और है कौन वो? रब्बिल आलमीन। चारा ही कोई नहीं इसके सिवा, मैं क्या कर सकता हूँ शुक्र के सिवा। तो ये खुदा के वजूद का एक जबर है जो मेरे ऊपर तारी करती है ये सूरह। आप लोग हो सकता है जबर के लफ्ज़ से वहशत ज़दा हों कि मज़हब जबर है एक एतबार से। मेरे पास चारा ही कोई नहीं, कहाँ जाऊँगा भाग के? कुरान सूरह रहमान में कह रहा है कि भाग कर देख लो, ज़मीन व आसमान के अख्तियार से निकल सकते हो, जा देख लो, कहाँ भाग कर जाओगे? कुरान कहता है गैर मौजूदिल्लाह, अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकोगे, जहाँ चाहोगे चले जाओगे, पकड़ लेगा। तो ये जबर है इस कायनात का। तो मुझे किसका शुक्र अदा करना है? रब्बिल आलमीन का शुक्र अदा करना, जो मेरा रब है, मालिक है, खुदा है। इसने मुझे अब इस हालत में दो चार कर दिया है, कारोबार नहीं चल रहा है, वो कह रहा है फिर भी आकर शुक्र अदा करो। क्यों? क्योंकि वो रब्बिल आलमीन है, अलबत्ता अर्रहमान अर्रहीम है, बड़ा मेहरबान है। अच्छा, मुश्किलें आ गई हैं, कोई बात नहीं, वो दिन आने वाला है, अदल हो जाएगा, मेहरबानी हो जाएगी, शफकत मुकम्मल हो जाएगी। ये दुनिया तो मैंने शफकत के लिए बनाई नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। ये कायनात इम्तिहान के एतबार से बेहतरीन है, रहने के एतबार से नाकिस तरीन है, अदल के एतबार से नाकिस तरीन है। मैं 10 कत्ल कर दूं, कितनी सजाएं मौत दे सकते हैं आप मुझे? एक। मैं एक बुढ़िया का प्लॉट छीनता हूँ, उसका प्लॉट छीनने के बाद उसको धक्के देकर गांव से निकाल देता हूँ, उसके घर में अपने गुंडे रखता हूँ ताकि कोई आ ना सके दोबारा। वो सर्दियों की रातों में दरख्त की खो के नीचे बैठी हुई ठटरती हुई कई साल गुजार देती है, और पुलिस आती है, गुंडों को पकड़ती है, मुझे पकड़ती है, जुर्माना करती और चली जाती है। उस बुढ़िया की जो तकलीफ़ थी उसका इजाला हुआ? उसका बदला हो सका? अब ये रहमान और रहीम चाहिए जो मुकम्मल मानी में अदल कर सके। तो फरमाया तसल्ली रखो, बाप मर गया तो कोई बात नहीं, कारोबार तबाह हो गया तो कोई बात नहीं है, मेरे पास आना ना, पूरी रहमत कर दूंगा, शफकत कर दूंगा, निहाल कर दूंगा, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु की मंजिल पे ले जाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। तो अब नमाज में देखिए कि मैं ज़िंदगी से उठकर आया हूँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए, और वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं, तुम रहमान और रहीम के सामने खड़े हो, रब्बिल आलमीन के सामने खड़े हो, पूरा अदब बजा लाओ, हकीकत को समझो कि हो क्या रहा है। अब आगे मालिकियों में दीन में मज़ीद तसल्ली हो जाती है, कोई बात नहीं, आपने मेरे साथ जुल्म किया है, आपका भी रब वही है, मेरा भी रब वही है, कोई बात नहीं, जिस खुदा का मैं कुंबा हूँ उसी खुदा के आप कुंबा हैं। तो अगर आज उसने आपको हाथ ऊंचा करने को दे दिया है तो कल कोई बात नहीं, खुदा के सामने मामला सारा हो जाएगा, अदल हो जाएगा। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात आसानियों में खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ी, एक बिल्कुल और तरह का तासुर उसने मेरे ऊपर डालना शुरू कर दिया। अब जब ये बात हो गई, बाप फौत हो चुका है, मैं कह रहा हूँ या कनाबुदू या कनस्ताई, या अल्लाह मैं तेरी बंदी छोड़कर नहीं जा रहा। ये जब मैं यहाँ आता हूँ नमाज में तो मुझे हज़रत यूनुस का जुमला याद आ जाता है, ला इला इल्ला अंता सुभाना किन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। उन्होंने एक फ़ैसला किया कि अपनी कौम को छोड़कर चले गए, अल्लाह तआला ने पकड़ा, मछली के पेट में डाल दिया सजा के तौर पर, और वो मछली के पेट में जुमला क्या बोल रहे हैं कि या अल्लाह तू ही मेरा खुदा है और कोई नहीं है, आपकी गलती नहीं कि मैं मछली के पेट में आऊँ, मेरी गलती है, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इला इल्ला अंता सुभाना का, आपकी कोई गलती नहीं, सुभाना का, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ा, मेरी गलती है। तो इय्याका नअबुदू इसी तरह का एहसास है कि हर तरह के हालात में मैं फातिहा पढ़ के खड़ा हूँ नमाज में और कह रहा हूँ या अल्लाह मैं तेरा ही बंदा हूँ, आपका कोई कसूर नहीं है, आपने ठीक दुनिया बनाई है, इम्तिहान के लिए बनाई है, कोई मसला नहीं है, मैं आप ही का बंदा हूँ, इन हालात में आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो गया ये जुमला अहद का जुमला है, इकरार का जुमला है। इसलिए जब सूरह फातिहा के बारे में हदीसों में एक बात आई है कि अल्लाह ताला जवाब देते हैं इसका कि मेरे बंदे ने मेरा शुक्र अदा किया, फरिश्तों से कहते हैं क्यों? क्योंकि ये जिस तरह के, क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़नी है आपने, कभी गमी है कभी खुशी है, इस हालात में आपके आकर जुमला बोलते हैं या अल्लाह तआला शुक्र है, ये कोई आसान बात थोड़ी है। हम चूँकि अरबी नहीं जानते तो बस पढ़ जाते हैं, पता ही नहीं होता कि क्या करने आए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो अल्फाज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे अंदर से एक चीज़ उगलवाना चाहते हैं कि जो भी हालात हो मैं अल्लाह आपका बंदा हूँ। या का नाबुदुआ या का नस्ताइन। अब नस्ताइन एक और पहलू से देखिए, मुश्किलें हैं, ज़िंदगी की तबाहियाँ हैं, ज़िंदगी की आसाइशें हैं, या अल्लाह मैं आपसे मदद चाहता हूँ। तो ये नमाज के अंदर इसके मानी ये हैं। अब एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे इस सीधे रास्ते पर, इस सीधे रवैये पर, अच्छे रवैये पर, बातों को मानने वाला, तेरा फर्मा बरदार बना दे मुझे, और मैं उनमें शामिल होना चाहता हूँ जिन पर तेरा इनाम हुआ है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनके उम्मती अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनकी तरह होना चाहता हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं होना चाहता जिन पर तेरा अजाब आए। अब फ़र्द के साथ क़यामत की तरफ ज़हन जाना चाहिए कि वहाँ भी कुछ मकज़ूब अलैहिम होंगे, वहाँ भी कुछ गुमराह करार पाएंगे, मैं उनमें नहीं शामिल होना चाहता। तो ये सूरह फातिहा है नमाज के अंदर, ये अहद मुआहदे की सूरह है, इस बात की सूरह है कि मैं अल्लाह से तलब करता हूँ कि या अल्लाह मैं अच्छे लोगों में शामिल किया जाऊँ। सिर्फ हदायत की दुआ नहीं है, ये अहद मुआहदे की सूरह है नमाज के अंदर। अब कुरान मजीद के साथ इसका दोबारा हम वापस आ जाते हैं। आगे जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, उसमें जो हदायत का मैंने कहा दो पहलू हैं, इसके अंदर हदायत मांगी गई है सीधे रास्ते की और सीधे रवैये की, दो चीज़ें मांगी गई। अगली दोनों सूरतें अगर आप देखेंगे तो टेढ़े रवैयों को समझाने के लिए आई हैं कि टेढ़े रवैये कहाँ कहाँ से पैदा होते हैं, मकज़ूब अलैहिम कौन है, ज़ालिम कौन बन जाते हैं। ये दो सूरतें हमारी उम्मत पर भी पूरी तरह से मुंतबिक होती हैं, सूरह अल-बकरा और आल-इमरान। जो इन दो कौमों के अंदर कजी पैदा हो गई हुई थी, टेढ़पन पैदा हो गया हुआ था, वही हमारे अंदर पैदा हो चुके हुए हैं। ठीक ठीक वही जाए, वही मुजरम, उसी तरह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यहूद नसारा कि तुम नाल बिन नाल पैरवी करो, कदम पे कदम, जहाँ जहाँ उन्होंने कदम रखा है वहीं वहीं रखो। तो सूरह अल-बकरा और आल-इमरान आज इस बात पर गवाह है कि हमारे अंदर बिल्कुल वही खराबियाँ हैं, वही टेढ़े रवैये हैं जो कुरान को मानने में रुकावट बनते हैं, जो अहले किताब के अंदर थे। तो वो हम इंशाल्लाह अगली नशिस्तों में देखेंगे। तो सूरह फातिहा दरअसल 40 मिनट आप लोगों ने कहा था, तो अभी 4 मिनट हैं। तो सूरह फातिहा दो पहलुओं से अहम है, एक कुरान मजीद का दिबाचा ओपनिंग होने के एतबार से, उस पर मैंने बात की, और एक नमाज में मुकर्रर करदा जिक्र के तौर पर कि हम उसको जिस तरह क़याम में पढ़ते हैं उसके पहलू से मैंने इसके दोनों वाज़े कर दिए। अब सूरह का पैगाम मुख्तसर तौर पर समझ लीजिए कि हम इस दुनिया में हैं जिस दुनिया को रब्बुल आलमीन ने बनाया है, रहमान और रहीम ने बनाया है, मालिक यौमिद्दीन ने बनाया है, ये इस दुनिया की हकीकत है। इस हकीकत के एतबार से हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हम इस हकीकी रब की बात को मान लें, और उसके मानी है या का नाबुदू के मान लें। अब इस पर कायम रहने के लिए किस हदायत की ज़रूरत है, किस रवैये की ज़रूरत है, उसकी दुआ की जा रही है। पैगाम इतना है कि हम खुदा के बंदे बने, इसका पैगाम ये है। किस खुदा के बंदे बने, जो इन तीन सिफात का हामिल है। तीन सिफात पर हम पिछली दफ़ा तफसील से बात कर चुके हैं कि पूरे दीन की बुनियाद ये तीन सिफात बनती है। इन तीन सिफात अगर खुदा ने बयान ना की होती तो दीन की बुनियादें नहीं बनती। अगर अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ना हो, किसी दीन की ज़रूरत नहीं है। वो रहमान और रहीम ना हो, जन्नत दोज़ख कायम नहीं होगी। वो मालिक यौमिद्दीन ना हो, तो जो मर्ज़ी फ़ैसले करा लें, जिससे दुनिया की अदालतों में होते हैं, डरने की ज़रूरत ही नहीं। ये तीन सिफात ही मुझे शुक्र पे मजबूर करती हैं, ये तीन सिफात ही मुझे मजबूर करती हैं कि मैं या का नाबुदू या का नस्ताइन की बात करूं, और यही मुझे मजबूर करती हैं कि मैं अहदिनस सिरातल मुस्तकीम की बात करूं। ये सूरह फातिहा है, इसलिए नमाजों में भी इसको पूरे शौर के साथ पढ़ना चाहिए, और कुरान मजीद में जब रखें तो उसमें भी पूरे शौर के साथ पढ़ना चाहिए। अब अगला जो कुरान मजीद पूरा है वो इसी दुआ का जवाब है कि हमने हदायत मांगी है, सही रवैये की तौफीक मांगी है, तो अल्लाह ताला आप सिखाएंगे कि हदायत क्या है और सही रवैया क्या है। तो मुख्तसर तौर पर इसका पैगाम इतना ही है। اب اس میں ایک اور پہلو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے. بہت سارے مفسرین نے الحمدللہ کا سبب باہر سے لیا ہے کہ نعمتیں دیکھیں, کائنات دیکھیں, اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے اس کو بتایا کہ نہیں, اندر اس سورہ کے اندر وہ مضمون موجود ہے جس کی وجہ سے شکر کیا جا رہا ہے. بس اس فرق کے ساتھ اس کو واضح رہنا چاہیے کہ مجھے کھانا ملا تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے, یا سورہ فاتحہ مجھے بتا رہی ہے کہ شکر کس بات پہ کرنا ہے. یہ دو فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ بتا رہی ہے کس بات پہ شکر کرنا ہے. وہ پہلی تین صفات جو بتائی گئی ہیں ان پر شکر بنتا ہے. میں نے اس کو ایک پہلو سے سمجھایا تھا کہ اگر کل قیامت والے دن ہمارے کسی چیف جسٹس صاحب کو حساب کتاب کا فیصلہ کرنے کا دے دیا گیا تو ظلم وجود میں آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ شکر کے لائق نہیں رہیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اگر ہم انسانوں میں سے کسی کو وہاں چیف جسٹس بنا دیا گیا قیامت والے دن تو وہ ناانصافی اور وہ غدر مچے گا کہ پھر دنیا والا معاملہ ہوگا. یہاں کتنے طاقتور مجرم ہیں جو اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہیں, اور یہ صرف ایسا نہیں کہ پاکستان میں, ساری دنیا میں ایسا ہوتا. تو انسان کرتے ہی رہے ہیں. تو اس لیے شکر کا حقدار ہی اللہ تب بنے گا جب تینوں صفات اس کے اندر موجود ہوں. اور میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ واو کے بغیر, یعنی ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والرحمن الرحیم و مالک یوم الدین, ایسا نہیں ہے. واو کے بغیر جب آتے ہیں تو اکٹھے تینوں ایک ٹائم پہ مانے جاتے ہیں. یہ تین چیزیں مل کر ایک خدا کا تصور دے رہی ہیں. یہ مشکل تصور ہے, اردو میں ہم ایسا نہیں کرتے بات, لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہے. اب میرا خیال وقت ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.